इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत की 5 दिन की यात्रा पर आ रहे हैं 14 जनवरी से। भारत और इसराइल के बीच में संबंध बने थे 1992 से और अब इन्हें एक नई सोच के साथ देखा जा रहा है। ये भी बात उठती है कि बीजेपी का जन्म हुआ है विनायक दामोदर सावरकर की किताब हिंदुत्व की नीति के साथ, और ये तो सर्वविदित है ही कि सावरकर ज्यूनिज्म से प्रभावित थे और उनका मानना था कि हिंदू और ज्यूज दोनों ही मुस्लिम उत्पीड़न का इतिहास साझा करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने पिछले साल इसराइल की यात्रा की। अब एक ओर तो संबंध मजबूत हुए हैं और दूसरी ओर जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू भारत की यात्रा पर आ रहे हैं उससे कुछ पहले ही भारत ने एक डिफेंस डील को कैंसिल कर दिया, तो भारत और इसराइल के संबंधों की स्थिति इस समय क्या है और क्या संबंधों की ये मजबूती सावरकर की विचारधारा से प्रेरित है, तो इसके बारे में और भारत इसराइल के संबंधों के बारे में बातचीत की है जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के प्रोफेसर और डीन जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और समीक्षक हैं प्रोफेसर श्रीराम चौलिया के साथ। और पहला सवाल यही था कि भारत का इसराइल की तरफ ये झुकाव क्या सावरकर की विचारधारा से प्रेरित है, तो उनका कहना था।
अनिता जी, जहां तक मेरा विचार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है और जो कूटनीति है वो इन धार्मिक विचारधारा से हटकर एक राष्ट्रीय हितों के आधार पर है और उन्होंने ये देखा है कि इसराइल भारत के लिए कई मायनों में लाभदायक है, आर्थिक हो, सामरिक हो, इवन कुछ हद तक की सांस्कृतिक जो आप कह रही हैं, तो इन सब को मिलाकर अगर देखा जाए तो इसराइल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है भारत के लिए। और मोदी जी का एक खास बात है कि वो देखते हैं कि दुनिया में कौन से ऐसे देश है जिनसे भारत को काफी फायदा मिलेगा, जिनसे जुड़ने से और जिनके संबंध और मजबूत करने से भारत को लाभ मिले। तो मेरे ख्याल से इसी आधार पर इन्होंने जोर दिया है। वैसे तो इसराइल, आपने सही कहा कि 1992 के समय से होता आ रहा है मजबूत संबंध, लेकिन पिछले 3 सालों में जो हमने देखा है वो खुद उन्होंने ऐतिहासिक पहली दफे भारतीय प्रधानमंत्री इसराइल गए और अब नेतन्याहू कोई 15 साल के पश्चात एक इसराइली प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं और उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। मोदी जी उन्हें साथ साथ उनके चलेंगे 4-5 दिन पूरे भारत के दौरे पर, तो ये जो है ये दर्शाता है कि उन्होंने जैसे कहा कि हमें ऊंचाई तक लेके जाना है इसे, क्योंकि इसराइल एकमात्र ऐसा देश है पूरे मध्यपुर में जिससे हम सिर्फ कारोबार की बात नहीं करते, सामरिक रिश्तों में भी बहुत ही करीब आ चुके हैं। हमारे डिफेंस हो, चाहे खुफिया एजेंसीज के बीच में सहयोग हो, तो इन सब मामलों में भी मेरे ख्याल से वो समझते हैं कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा हो, आर्थिक जो हमारी सुरक्षा हो, इन सभी मामलों में इसराइल हमारे लिए बहुत ही केंद्र बिंदु सा बन गया है इस सरकार में। और मेरे ख्याल से ये सही भी है क्योंकि राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही विदेश नीति बननी चाहिए।
जी, अभी आपने डिफेंस की बात की, उसके ऊपर बात मैं आगे करूंगी ही, लेकिन आपने पहले बात की पिछले 3 सालों की या 4 सालों की कह सकते हैं, तो उसके ऊपर पूछना चाहूंगी कि क्या ये कुछ सिटिंग ऑन फेंस जैसी बात हो रही है, क्योंकि 4 साल पहले की बात करें तो भारत ने इसराइल के गाजा में चल रहे घातक हमलों पर जो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार काउंसिल की जांच का जो आह्वान था उसमें भारत ने उसका समर्थन किया, और दूसरी ओर उसी समय संसद में इसराइल की निंदा करने वाली संसदीय वोट पर उन्होंने रोक लगा दी। तो क्या ये दो तरफा संतुलन बनाने वाली स्थिति है, क्योंकि भारत फिलिस्तीन का भी समर्थक रहा है और यूं कहें तो भारत पीएलओ को मान्यता देने वाला पहला नॉन अरब स्टेट रहा 1974 में, तो इसके बारे में भी कुछ जानना चाहूंगी।
जी अनिता जी, ये संतुलन जो आप कह रहे हैं वो एक तरह से हमने कायम रखा हुआ है, मोदी जी ने भी वो आगे लेके आए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में भी एक वोट हुआ जिसमें अमेरिका की निंदा की गई कि उसने जेरूसलम को इसराइल का
जी ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जब उम्मीद तो उस समय ये की जा रही थी कि शायद भारत इसके बारे में वोट ही नहीं करेगा और तटस्थ रहेगा, लेकिन उसने संयुक्त राष्ट्र के रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट किया।
ये इसकी वजह ये है कि इसराइल के साथ जो हमारे संबंध है उससे कोई हानि नहीं पहुंचने वाली अगर हमारे वोट इस मुद्दे पर अगर इसराइल और अमेरिका के हितों के खिलाफ भी जाए तो इसराइल समझता है, क्योंकि देखिए इसराइल ने कभी भी कंडीशनल नहीं बनाए कि आप देखिए भारत अगर आप हमारे प्रक्षेपास्त्र और हवाई जहाज और ये सब अगर आप चाहते हैं तो आपको फलस्तीन के खिलाफ जाना पड़े, तो ये कभी भी कंडीशनल नहीं रहा। इसराइल नहीं समझता कि भारत ऐसा देश है, ऐसी शक्ति है जो झुककर कन्वीनियंस के लिए अपने जो मूल्य है और सिद्धांत है वो छोड़ देगा, क्योंकि इसराइल ये भी जानता है कि साथ साथ उसकी भी निर्भरता है भारत पर। आप देखिए इनके जो आयात निर्यात व्यापार का देखें आप तो भारत उनका नंबर वन ट्रेडिंग पार्टनर हो चुका है, खासतौर पर डिफेंस में, तो ये तो कारोबार चलता रहेगा चाहे हम किस पर भी वोट डालें। तो मेरे ख्याल से मोदी जी की यही राय थी कि फलस्तीन पे दो राष्ट्र का जो फॉर्मूला है वो हम सदियों से उसकी समर्थन करते आ रहे हैं और करते रहेंगे और इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि इसराइल इसे बुरा इस पर बुरा मानने वाला नहीं है और इसकी वजह से कोई हमें इसराइल से जो मिलने वाली बारूद वगैरह है वो कम नहीं होने वाले बल्कि बढ़ते रहेंगे, क्योंकि व्यापार का मामला, दूसरी तरफ आतंकवाद का जो इश्यू है उस पर हम दोनों में इतनी क्लोजनेस है, इतनी हम करीब है, क्योंकि तो इसलिए मैं नहीं मानता हूँ इसलिए कि ये कोई हमने गलत कदम उठाया हो, बल्कि इसराइल समझता है। इसे साथ साथ में एक और मामला जोड़ना चाहूंगा ईरान का, क्योंकि पिछले कई सालों से इसराइल मानता आ रहा है कि ईरान उसका जानी दुश्मन है और इस तरफ भारत और ईरान के बीच सामरिक संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। हमने चाबहार जो बंदरगाह है वहां पे बहुत बड़ा हमने इन्वेस्टमेंट किया है और आगे भी पाकिस्तान का जो चैलेंज है वो हम ईरान के जरिए कुछ हद तक हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसराइल कभी नहीं कहता कि देखिए आप ईरान से संबंध मत रखिए, देखिए आप फलस्तीनियों के खिलाफ जाइए। तो सोच हमारी यही है कि इसराइल के साथ जो संबंध है वो इन मामलों से जुड़े नहीं है, हम अंग्रेजी में कहते हैं डीहाइफनेट। तो एक तरफ से हम ये भी चला रहे हैं फलस्तीन वाला किस्सा भी और साथ साथ इसराइल के साथ, तो एक तरफ से हम दोनों को आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाए हैं और एक का असर दूसरे पे नहीं पड़ रहा है, तो ये अच्छी बात है और मेरे ख्याल से ये कूटनीति में दूरदर्शिता दिखाती
है। जी ये दूरदर्शिता का परिचय देती है, चाहे जो डील कैंसिल हुई है या यूएन में अपनी स्पष्ट राय दी है वहाँ, तो ये चुनौतियाँ समय समय पर आती रहेंगी। और अब जब इसराइल के प्रधानमंत्री भारत में आ रहे हैं तो कई नए समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं, तो यानी कह सकते हैं कि आने वाले सालों में भविष्य उज्जवल ही है।
उज्जवल जरूर रहेंगे अनिता जी, क्योंकि म्यूचुअल इंटरेस्ट जो कहते हैं ना, दोनों तरफ समझ बूझ है कि हमें एक दूसरे की जरूरत है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि हालांकि वो जो स्पाइक प्रक्षेपास्त्र एंटी टैंक मिसाइल है वो डील हालांकि कैंसिल हुआ हो, उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे एक विवाद हो गया था, उसके बावजूद कई और प्रोजेक्ट्स हैं डिफेंस सेक्टर में जो कि बहुत ही हाईटेक सामरिक माने जाते हैं, जैसे कि टॉर्पीडो जो कहते हैं ना, पनडुब्बी जो होती है उनमें से जो चला जाती है उस पे अभी बातचीत चल रही है। साथ साथ देखिए कई मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम जैसे हैं जो कि इसराइल अकेली ऐसे देश है जो हमें दे सकती है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए।
जी जैसे अभी ही 131 बाराक सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदने की भी बात हुई है राफेल से ही,
गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे अभी भी एक छोटा समझौता हो सकता है, हालांकि बड़ा जो डील था वो $500 मिलियन का वो रद्द हुआ है। तो साथ साथ देखिए मशीन गनों की बात चल रही है, अब ये जो खुफिया एजेंसी के बीच में जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है ये और मजबूत हो रही है। भाई प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक बच्चे को लेके आ रहे 12 साल के जो कि जिनके वालिद वालदा को आतंकवादियों ने मारा था मुंबई हमले में 2008। तो आप ये देखें तो इससे एक चिन्ह जैसा उन्होंने प्रदान किया है भारत को कि देखिए हम दोनों एक तरह से विक्टिम्स हैं कट्टरपंथी और उग्रवादियों की, तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो, और फार्मा फील्ड है, कृषि के क्षेत्र में इसराइल ने काफी मजबूत किया है हमारे किसानों को, नए बीज और नए तरीके की खेती के साधन और सामग्री दिखाकर। दूसरा देखिए, ये जो हमारे हीरे हैं सूरत वगैरह, गुजरात खासतौर पर नरेंद्र मोदी जी ने इसका बड़ा बहुत बढ़ावा दिया है। ज्यादातर हमारे जो डायमंड जो बनते और एक्सपोर्ट होते हैं वो इसराइल को जा रहे हैं। तीसरी चीज अभी आईटी और स्टार्टअप्स, जो उद्यमी जो नवयुवक हैं वो इसराइल में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और उनसे हमारे जो नौजवान है वो सीख मोदी जी प्रदान करना चाहते हैं इसराइल को। चौथी चीज देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले दफे जब मोदी जी गए थे ऐतिहासिक यात्रा पर, ओल्गा एक बीच है वहां पे इसराइल में समंदर के किनारे, जहां पे उन्होंने डीसैलिनेशन की एक जीप दिखाई उन्हें और अब वो उन्हें तोहफे में दे रहे हैं, जिससे की जो नमकीन पानी है उसे साफ बनाया जा सकता है लोगों के पीने के लिए। तो इस तरह की जो तकनीकी मामले हैं जिसमें इसराइल बहुत आगे पहुंच चुका है और इससे भारत को सहायता मिलेगी अगर हम उनसे सीखें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो पाए, तो केवल ये सुरक्षा रक्षा के क्षेत्र में नहीं है, एक तरह से ऑलराउंड रिलेशनशिप बन रहा है।
जी, भारत और इसराइल के बीच के जो संबंध हैं, जिनमें देखने में लगता है कि कभी कोई चुनौतियां आई हैं लेकिन उनका क्या असर है, कुछ प्रभाव है भी या नहीं है, इस सब के बारे में श्री राम जी आपने जो जानकारी हमें दी है उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद कहना चाहूंगी।
शुक्रिया।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।